शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरकृषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय भक्त्या विहीनापराधलक्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मेतया तर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् तवैवास्मि तवैवास्मि न जिमामि त्वया विना इति विज्ञे राधे त्वं न मां शरणन्ति के। কোথায় গেল রে কাগজটা? কোথায় গেল? কে কে এখান থেকে নিয়ে গেছে? কালকে কে নিয়ে গেল? কোথায় তো দেখি না তো। वंदे नंद ब्रजेष्ठेनं पादरण्यं वापेक्षणश जासं हरो हरि कथोद्गीत पुनात भुवनस्थ। उद्धव जी गोपियों के चरण की वंदना करते हुए कह रहे हैं, मैं नंद ब्रज की स्त्रियों में से एक गोपी की एक चरण रेणु की वंदना करता हूं। जासंग हरि कथोद्गीत, जिनके भगवान की कथाओं के गान से जब वो करते हैं तो सारा त्रिभुवन, त्रिभुवन माने ऊर्ध मध्य और निम्न, ऊर्ध बैकुंठ से लेकर के एकदम गोलोक वृंदावन और मध्य, मध्य माने ब्रह्मलोक इत्यादि सब, उसे ब्रह्म वहां से विषय के बिरजा इत्यादि सब, और फिर ये सब लोग पाताल इत्यादि सब, ये सभी उनके मुख से निकले हुए कथाओं के द्वारा सभी पवित्र हो जाते हैं। अब सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं गोपियों के महात्मा का वर्णन किया, इसके पहले में उन्होंने वर्णन किया, आशा महो चरण रेणु जिषा महम श्याम वृंदावने किम कुल मलतौ श्रीधेनाम जा दुस्तजंग स्वजन आर्य पथंच हित्वा भेजे मुकुंद पदवीं श्रुतिभि निवेद्या। इसमें उन्होंने बतलाया गोपियों ने आर्य पथ इत्यादि को, लोक लज्जा धर्म पातिव्रत धर्म सबको उन्होंने जलांजलि दे दी, सब कुछ छोड़ दिया, इसलिए कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, इसलिए इन गोपियों की चरण धूलि को सेवा करने के लिए यदि मैं ब्रज में कहीं भी लता गुल्म घास बन जाऊं तो हमारा जीवन सार्थक है, ये प्रार्थना किया। कहे नहीं, ये संभव मेरे लिए नहीं है। गोपियों की चरण धूलि, उनके चरण हमारे ऊपर में पड़ जाएंगे, ये संभव नहीं है, मैं बहुत अयोग्य है। गोपियों का इतना ऊंचा भाव जो उद्धव भी उसको स्पर्श करने में असमर्थ हैं, इसलिए वो बतला रहे हैं यहाँ इस श्लोक में। गोपियों के महात्मा को वर्णन करते 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 भावावेश में सुस्वर में उच्च स्वर से ये कीर्तन करते 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 साष्टांग प्रणाम किया, गोपियों से बात करते करते भावाविष्ट हो गए कीर्तन करते करते, और उनके चरणों के समीप में छुए नहीं, चरणों के समीप में साष्टांग दंडवत प्रणाम, क्योंकि उन दोनों में अभी बातें हो रही हैं। और गिर करके उनके चरणों को छूना राज्य उनके लिए संभव नहीं, बहुत दुर्लभ है, इसलिए एकमात्र एक रेणु को किसी प्रकार से ग्रहण किया और सिर पर धारण किया, अथवा धूलि के सामने उस धूलि को लक्ष्य कर साष्टांग प्रणाम किया। What I told? You understand? अच्छा, पीछे वो बोलेंगे, रामचंद्र विल स्पीक आफ्टर वर्ड। और कहे बंदे बंदे नंद ब्रजेष्ठ, यह श्लोक ये तो पहले बतलाया जैसे उनके सामने बातचीत हो रही और साष्टांग प्रणाम किया, अब ये कहते हैं अपरोक्ष में भी हो सकता है, गोपियों की महिमा देखी और देख करके इतना ऊंचा भाव उठा, वहीं पर थे जहां वो थे वहीं पर, गोपियां नहीं थी वहां, किंतु उनके उद्देश्य से उस चरण की रज के उद्देश्य से उनको सर्वत्र ही गोपियों के चरण रज मिले। ब्रज में ऐसा कहां है जो गोपियों की चरण धूल नहीं है, इसलिए वहीं से गोपियों के सामने नहीं अपरोक्ष में भी प्रेम राशि के उदय, प्रेम उनके हृदय में प्रकट हुआ और वो इस प्रकार से सुस्वर से उच्च स्वर से कहने लग गए, अथवा परम गौरव के कारण, गोपियों के चरण धूलि का गौरव बहुत अधिक है, इसलिए सम्मान दिखलाने के लिए वे संकीर्तन के द्वारा जब उनके अंदर में भाव आया तो वहीं पर लौट गए और प्रणाम करते हुए वंदना करने लगे। अभीक्षण सह बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणुम अभीक्षण सह, अभीक्षण सह माने निरंतर, मैं निरंतर इनके चरण कमलों के धूलि की निरंतर वंदना करता हूं ना? और जिनकी हरि कथा संबंधी उच्च गान के द्वारा ये गोपियां कृष्ण के मिलन में या विरह में जब कृष्ण की कथाएं कहती हैं, त्रिभुवन ऊर्ध अधः और मध्यस्थित लोक सकल, जितने लोक हैं ऊपर नीचे और बीच में, सारे लोग पवित्र हो जाया करते हैं। कैसी कथाएं कहती हैं? अब जैसे एक ही कोई भी एक ले लिया जाए, यत्ते सुजात चरणम वरुहम स्तनेषु भीता स्वनै प्रियदधि मही कर्कशेषु तेनाटविम अटस्य तद पृथतेन कुंसत कुरुपाद विभ्रमत धीर भवजा, अथवा कोई भी ले लो उसमें से, तव कथामृतम तप्त जीवनम, अथवा प्रणत देहिनां पापकर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदम्बुजम, ये ले लो, अथवा जो अक्ष्मतां फलमिदम न परम विदाम सखा पशुन अनुविवेश यतोर्वयस्य वक्तम बजेश सुतयो अनुबेनुजुष्टम जैवानिपीतम अनुरक्त। कोई भी जब कहा कि गोपियों की कोई भी उक्ति है विशेष करके विरह में विप्रलम्ब अवस्था में जब कहती हैं, उससे तीनों लोक पवित्र हो जाता है। हरि कथा का महत्व तो है, किंतु किसके मुख से होगा? गोपियों के मुख से जब होगा, तो जो जितना उच्च कोटि का भक्त है उसके मुख से जब हरि कथा होती है अनुभूति के साथ में, हम लोग अभी जो कहेंगे अनुभूति के साथ नहीं होती, और उन लोगों का उस प्रेम के साथ में होता है। सुखदेव ने भी, सुखदेव गोस्वामी ने भी कहा है उदगीयती नाम अरविंद लोचनम ब्रजांगनानम द्युम स्पिशद ध्वनि दत्नस्य निर्मंथन शब्द मिश्रितो निरस्यते जैन दिशाम अमंगलम। ये 46वें अध्याय में, 10 के 46 अध्याय में ये बतलाया गया। आफ्टर माने बिफोर कौन उद्धव संदेश, बिफोर संदेश, वो 47 में है, ये 46 में। अर्थात क्या बतला रहे, भजंगन आंगन अरविंद लोचन श्री कृष्ण को के लिए, कृष्ण के संबंध में गान करना आरंभ किया। कब? दधि मंथन करते करते अपने चूड़ियों के झंकार और दधि मंथन के शब्द के द्वारा जब गान करना आरंभ किया, तो वो समस्त दिशाओं का अमंगल सब कुछ दूर हो गया। अब कैसे हो गया? यदि एक महादुराचारिणी वेश्या हरिदास ठाकुर के ऐश्वर्यमय नामों के कीर्तन करने से उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं, तो गोपियों के गान से, जो कि जसोदा जी और उनकी सहेलियां जब दधि मंथन कर रही हैं और कृष्ण लीला चरित्र का गान कर रही हैं, तो जगत का अमंगल रह सकता है? यदि जगत का मंगल चारों तरफ में हो जाता है, जब हरिदास ठाकुर के द्वारा हो जाता है, तो क्यों नहीं इनका होगा? यदि हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु के कृष्ण कृष्ण कहो और जगाई मधाई जैसा अत्याचारी पाषंडी व्यक्ति भी उस सुन करके अद्रवित हो जाता है, उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं ये गोपियां कृष्ण के मंगलमय नामों का वो नाम क्या कर रही होंगी, यशोदानंदन गोपीकांत और सब नाम कर रही हैं। इसलिए अमंगल दूर हो जाए और मंगल हो जाए, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। इसलिए हो जाता है। अथवा महिमा निबंधन गीतो हरि कथा गीतेर न्याय अति श्रेष्ठ, गोपियों के मुख से निकला हुआ गान और हरि कथा जैसे सुखदेव जी कर रहे हैं कृष्ण लीला चरित्र का गान। हरि कथा के लिए सर्वत्र यह बतलाया गया है, वो क्या है, जद अनुचरित लीला कर्ण पीयूष पिब्रुट, कौन है वहां क्या कर रही, इधर आ जाओ। जदानुचरित लीला कर्ण पीयूष पिब्रुट सकत ददन विधुत दंद धर्मा विनष्ट। हरि कथा की कह रहे हैं, मानव भ्रमण कर रहा कि तुम जब कृष्ण ऐसे अपराधी हैं और रसिक हैं और उनमें लाखों दुर्गुण जैसा तुम लोग कह रही है तो फिर उनका नाम गान किस लिए कर रही? तो हम कृष्ण को छोड़ सकती हैं, कृष्ण की कथाओं को छोड़ नहीं सकती, क्यों नहीं छोड़ सकती? हम कुछ बेसमझी की हमने बचपन में कृष्ण का नाम कहीं से सुन लिया, उनकी लीला कथाओं को कहीं से सुना और सुन करके पागल हो गई। जदानुचरित लीला कर्ण पयूष पिब्रट, अनजाने में ही उनके कान हमारे कानों में कृष्ण का नाम चरित मधुर आया और इतना प्रभावी कि हमको पागल बना दिया। हमको ही नहीं, हजार लाखों को वृंदावन में पागल बना करके ला दिया। और वो पक्षियों की भांति, उनका कोई घर नहीं, डेरा नहीं, कुछ नहीं, खाने को नहीं, और वो दिन रात रोते हैं, अपने घर वालों को भी रुलाते हैं। अब फिर छूट नहीं सकता, ऐसी हमारी दशा हो गई है। इसलिए हरि कथा को हम छोड़ नहीं सकती, कृष्ण को छोड़ सकते हैं, हरि कथा को नहीं छोड़ सकते। यदि कृष्ण की कथा में इतना है तो समझो जो उनका गान कीर्तन यदि किया जाए, नाम का नाम अथवा उनके लीलाओं का कोई छंदोबद्ध होकर के कोई नया भी भक्त यदि करता है, जैसे कि बिल्व मंगल ने किया है। कृष्ण उनके मुख से निकले हुए अपनी महिमा सूचक, विशेष करके महिमा सूचक कैसी, लभते जयश्री। जयश्री माने राधा जी किशोरी जी के साथ में जब उनके इसको वर्णन करते हैं तो एकदम कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं और खूब कान लगा करके सुनने के लिए लठिया पकड़कर उनको ले जा रहे हैं, कृष्ण को आकर्षित कर देता है। इसलिए गोपियों का जो उद्धव इनसे बिल्व मंगल से कोटि कोटि गुण, कोई तुलना नहीं हो सकती। और जब वो कीर्तन करेंगी तो कृष्ण आकृष्ट नहीं हो जाएंगे, इसलिए इसकी महिमा बढ़ती है। इसलिए कहते हैं कथा के उनका गीत भी वैसे ही हरि कथा गीत की भांति अत्यंत श्रेष्ठ है। अथवा इस दृष्टांत के द्वारा ये समझा जाता है, जहां देर कथाई उद्गीत महात्मा गाथा त्रिभुवन लोक समूह पवित्र कर दिया था। हमने बतलाया जब हरिदास ठाकुर और उनके भक्तों के द्वारा ही जो हरि कथा होती है या उनका गान या हरे कृष्ण नाम ही जगत को पवित्र करने वाला होता है, तो गोपियों के मुख से निकले हुए छंदोबद्ध जो कीर्तन है क्यों नहीं जगत को पवित्र कर सकते। इसलिए परम पवित्र होते। उद्धव जी का अभिलाषा क्या है, उसमें उनके हृदय की भावना क्या है, व्यंजना क्या है? हमारी इष्ट गोपियां हैं, मैं और नहीं कह, उनका कथा गान के द्वारा ही उनको मैं प्रसन्न करूं। यदि किसी को प्रसन्न करना है, कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो उनकी कथाओं के द्वारा प्रसन्न करेंगे। इसलिए ये कथा करते हुए, गान करते हुए और जमीन में लोट पोट करके गोपियों के चरण की धूली की वंदना कर रहे हैं दूर। इसलिए अपने इष्ट, उनके इष्ट हैं, अभी ये साधक हैं उद्धव, उन्होंने इष्ट मान लिया। इष्ट माने क्या, अपना ऑब्जेक्ट मान लिया और फिर उसको पाने के लिए चरण की धूली को, और ये उनका महिमा गान कर रहे हैं। जब कृष्ण अंतर ध्यान हो गए तो गोपियों ने उनके विरह में उनके गुण गान करके जय चित्यधिकम कृष्ण आकृष्ट होकर के आगे। उद्धव जी सोच रहे हैं कि यदि गोपियों को महिमा करूं तो गोपियां आ जाएंगी और कृपा करके अपने चरण की धूली का स्पर्श देंगी, हमारा जीवन सार्थक हो गया। शिक्षा क्या है, वस्तुतः ब्रजसुंदरियों की चरण की आराधना के बिना, रेणु के आराधना के बिना ब्रजजाति प्रेम नहीं लाभ हो सकता। वास्तव में जिसको ब्रज प्रेम के लिए लोभ है, जब ब्रज का प्रेम मिल जाए तो गोपियों की चरण धेनु रेणु की आराधना के व्यतीत नहीं होगा। वो रघुनाथ दास ने भी बतलाया, अनाराध्या रधा पदम भोज रेणुम, उन्होंने उसका गोपी का नाम ले लिया। अनाराध्य राधा पदम भोजरेणम अनासित बिंदाटवी तत्पदाकम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुदा श्याम सिंधो रसास्यावगा। तो जिसको ब्रज रस को पाना है, गोपियों की चरण धूलि की वंदना और उनकी आराधना किए बिना वो नहीं हो सकता। मीराबाई इत्यादि का जो देखा जाता है कृष्ण में अनुरक्ति है, किंतु गोपियों के प्रति अनुरक्ति नहीं, इसलिए उनको ब्रज प्रेम नहीं मिला, द्वारका का प्रेम। इनके लिए भी हम देखते हैं द्विज पत्नीगण मथुरा की, वो लोग भी ब्रज प्रेम चाहती थी, कृष्ण की आराधना की, गोपियों की चरण की धूलि की आराधना नहीं की, इसलिए विलंब हो गया। इसलिए लक्ष्मणश्रीय मृदु नहीं, वो नहीं, लक्ष्मी जी को भी नहीं मिला, इसीलिए उनको भी नहीं मिला, नहीं मिला लक्ष्मी जी। क्यों? गोपियों का अनुगत्य नहीं किया, कृष्ण को चाहती हैं, कृष्ण प्रेम चाहती हैं, किंतु ब्रज गोपियों का अनुगत्य नहीं किया। इसलिए कोई भी हो ब्रज प्रेम चाहता है और गोपियों के चरण की धूली ना ले, कृष्ण से ही प्रार्थना कर तो तभी नहीं होगा, इसलिए इस चीज को दिखलाया है। लिखे छे तो शुद्ध भान माने भक्त तो नहीं शुद्ध, हाँ वही जन जे रकम होते प्रहलाद शुद्ध भक्त न, ओरकम विचार को कि ज्ञानी भक्त ब्रजे भक्त ना, किंतु जखन भक्ति जखन वही साधारण भाई विचार करावे तार भक्ति के शुद्ध के ना बोला हुए ना, किंतु ऐश्वर्य मिश्रित हुआ थे प्रभुपाद उखने इस रकम बोले छे। मैं तो कहता हूँ उन्नत जैसे द्वारकाधीश में थे तीन मिशे गए आतार बीस तीन कीर्तन कर तो कृष्ण आसन बांसी नहीं आसन, किंतु कौन गोपी के राधा के संगे नहीं आसन नहीं, यही जन ताके शुद्ध ब्रज प्रेम के प्राप्ति जगला। एटा मन करवाना जैसे वही ताके बोले दे जैसे वही कर्म ज्ञान मिश्रा भक्त एटा बोलब ना, एटा होते पारे ना, गोपी गण अनुगत्य नहीं ब्रजर सब ने एक गुली के सामंजस्य करते हैं, नहीं तो कृष्ण तार बांसी ते से आर नित्य कर्मेन तार संगे आते द्वारकाधीश से मंदिर थी जे गोदा देवी मतुन प्रवेश करे गए, गोदा देवी थार शुद्ध भक्ति बोला है ना, किंतु उनियों कुछ कुछ भाव तो छिलो किंतु तनी मिशलेन का आर मध्य है गोदा देवी नारायण मध्य मिशलेन कृष्ण मध्य मिशन नहीं, जैन गोदा देवी के भक्ति से तुम्हें की बोलब जानो गोदा देवी के कि जानो ना, तनी दस जन अलवर मध्य एक जन उद्धव का की बोला है शुद्ध भक्त बोला है कि ना की बोला है की बोला है ब्रज प्रेमाचे की तो तब तो यही यदि हमारा कोई अमूनार भक्ति हमारा चाहिए शुद्ध ब्रज भक्ति ना এরকম একটা সামঞ্জস্য করে দিতে হবে, কোনো অপরাধ কোনো বৈষ্ণব চরণেতে না হয়, এটা সব সময় খেয়াল। অনেক লোক বলে যে সে ও প্রহ্লাদ মহারাজ জ্ঞানী ভক্ত, জ্ঞানী ভক্ত মানে শঙ্করাচার্যের জ্ঞানী ভক্ত, তাহলে ভক্ত কেন বলা হলো, ঐশ্বর্য জ্ঞান মিশ্রের জন্য বলা হয়। এই জন্য ভক্তি ওখানে আছে কিন্তু ব্রজের ভক্তির পুট নাই, ঐশ্বর্যতে শিথিল, আপনি সর্বত্র কৃষ্ণকে দেখছেন কিন্তু ব্রজের কোনো ভক্ত কৃষ্ণকে অন্তর্যামী রূপেতে আর এখানে কেউ দেখবে না, কোনো ভক্তরা দেখবে কৃষ্ণ লাখবার দেখান তারা মানবে না, এই যেন ওই হিসাবে তো ওদের বিচার ওইখানে। আর সেই জাতীয় প্রেম বিনা ব্রজপ্রেমকে को पाने के लिए गोपियों का अनुगत्य अत्यंत आवश्यक है। जो ब्रज का गोपियों का चरण की धूलि की आराधना नहीं करेंगे, लाख चेष्टा करने पर भी वो नहीं होगा। दूसरी बात उनका, ऐ चुपचाप बैठो, नहीं तो यहां से बात कर देंगे। चुपचाप देवी के पुतली की तरह बैठो, जाओ वहां पर बैठ जाओ चुपचाप देवी जैसा। और जब तक कि वो ब्रज जाती है, गोपियों के चरण की धूलि की कृपा नहीं होगी, कृष्ण का परिपूर्णतम माधुर्य आस्वादन नहीं होगा। इसलिए उद्धव जी को, प्रहलाद जी को गोपियों की चरण धूलि की उन्होंने आराधना नहीं की, इसलिए कृष्ण का संपूर्ण या पूर्णतम माधुर्य आस्वादन नहीं किया, कल्पना नहीं कर सकते। आज जो लोग अभी साधक हैं, भले ही उनको सिद्धि नहीं है, उनको कुछ अनर्थ भी है, केवल अभी थोड़ा सा ये क्या कहते हैं आसक्ति या उसके पहले रुचि आसक्ति है, किंतु गोपियों के चरण की धूलि की रक्ति और आसक्ति है तो ये बहुत ऊपर उठ जाएंगे। अनर्थ रहने पर भी बहुत ऊपर उठ जाएंगे। और यदि भाव पैदा हो गया गोपियों के चरणों की धूलि के लिए, तब तो फिर कोई बात ही क्या। तब तो प्रहलाद महाराज और सबसे, प्रहलाद महाराज भी वंदना करेंगे उनकी, उद्धव भी वंदना करेंगे, बल्कि उनकी महिमा को स्पर्श नहीं कर सकते, इतनी बड़ी चीज है वो नहीं कर सकते। और ये लोग क्या करेंगे, उद्धव जी को, नारद जी को, प्रहलाद महाराज जी को, एक साधारण भक्त को भी ये प्रणाम करेंगे, जैसे यशोदा जी, उनके सामने में कोई भी ब्राह्मण आ जाए साधारण भी, उसको प्रणाम करेंगे और कहेंगे जी हमारा लाला सुखी रहे। नारद जी, उद्धव जी ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए बिना ब्रज गोपियों की चरण की धूलि की कृपा से कृष्ण के परिपूर्णतम माधुर्य का आस्वादन नहीं होता, किंतु साक्षात भावे चरण धूलि ग्रहण असंभव, किंतु गोपियों की चरण धूलि को पाना बड़ा भारी असंभव है साक्षात रूप में, क्योंकि सजातीय अपेक्षा करें। सजातीयत्व, सजातीयत्व माने भजन के समय में ही उनका ऐसा भाव रहे, गोपियों के भाव से लुप्त हो गए हैं, तब तो ये हो जाएगा। गोपियों का भाव सजातीय, अर्थात गोपियां जिस भाव से कृष्ण की सेवा करती हैं, ऐसे ही किसी के हृदय में हो तो ऐसे प्रेम को पाने के लिए वो गोपियों की चरण की धूलि की बने, और फिर वो सजाती होने के नाते उनका भाव उनमें संक्रमित होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए उद्धव जी पदरेणु का लख कर आई, नमस्कार कर ले, उसको धूलि को नमस्कार किया, साक्षात प्रेम गदगद कंठे विनय पूर्वक तार वंदना कर ले। कौन प्रेम? ऐश्वर्य वाला प्रेम, उससे गदगद होकर के, जैसे कि अक्रूर जी वृंदावन वहां पर नंदगांव में पहुंचे और कृष्ण के चरण चिन्हों को देख करके वो जो प्रेम में गदगद होकर के रोते हुए रोने लगे, वो कौन सा प्रेम था? ऐश्वर्य मिश्र अपनी दीनताहीनता और कृष्ण की महानता का वो कर रहे हैं। ब्रज गोपी लोग क्या करेंगे? अपनी बड़ाई बड़प्पन और कृष्ण का छोटापन वो विचार करेंगे। इस प्रकार भगवान ही बृहस्पति के साक्षात शिष्य महाभागवत उद्धव जी के द्वारा गोपियों के मर्यादा का स्थापन किया। स्वयं भी भगवान भी परोक्ष रूप से माने घुमाकर परोक्ष रूप से अपने भक्तों का अनुवर्तन करते हैं। किस लिए अनुवर्तन करते हैं? कि अपना आस्वादन नहीं कर पाते हैं अपने, इसलिए भक्तों को भाव को लेकर के तब आस्वादन करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, चैतन्य महाप्रभु माने कृष्ण भक्त का भाव लेकर के चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रेम का आस्वादन किया, जगत में भी प्रेम को दिया। इसलिए कृष्ण भी अपने भक्तों का अनुसरण करते हैं। यह तो भगवान भक्त भक्ति भक्तिमान भक्त भक्तिमान, क्योंकि कृष्ण भक्तिमान है, भक्तों के भक्तिमान है, कृष्ण में भक्तों के प्रति भक्ति है। अब राधा जी को गोपियों को भक्त मान लो और देखो उनके लिए वो भागवत में भगवान ऐसा समझते हैं, मैं भक्त की पदधूलि के द्वारा ब्रह्मांड को पवित्र करूंगा। कृष्ण अपने चरण धूलि से ही भी तब पवित्र कर सकते हैं, गोपियों की चरण धूलि हो और कृष्ण की चरण धूलि हो, दोनों में किसकी महानता है? क्यों? उसके द्वारा कृष्ण के संपूर्ण माधुर्य का आस्वादन किया जाएगा, कृष्ण के चरण की धूलि से वो माधुर्य आस्वादन नहीं हो सकता। आ रहा है समझ में? लिटिल इट इज वेरी हाई थिंग। मैं भी, कृष्ण कहते हैं, कृष्ण इज टेलिंग, मैं भी भक्तों की भांति भक्ति के द्वारा पूर्ण आस्वाद्य माधुर्य रस आस्वादन करूंगा। जैसे भक्त लोग हमारा माधुर्य आस्वादन करते हैं, मैं भी भक्तों के अनुगत होकर के अपने माधुर्य का आस्वादन करूंगा। ऐश्वर्य ज्ञान होते केवल केवल भाव प्रधान, पृथ्वी ते भक्त नहीं उद्धव समान, कृष्ण रपे असी ब्रजे जतो गोपीगण, जार पद धूलि करे उद्धव प्रार्थ। चैतन्य चरितामृत में ऐसा कहा गया, ऐश्वर्य ज्ञान होते केवल भाव प्रधान, ऐश्वर्य ज्ञान से माधुर्य संपूर्ण, केवल माधुर्य ज्ञान, माधुर्य भाव बहुत श्रेष्ठ है। पृथ्वी में जितने भी भक्त हैं उद्धव के कोई समान नहीं है, और उद्धव भी गोपियों की चरण की धूलि की वंदना करते हैं। और भी कहते हैं, सेई प्रमाण राधिका परम आश्रय, सेई प्रेमार, उस प्रेम की राधिका जी आश्रय हैं, सेई प्रेमार आमी होई केवल विषय, और प्रेम के विषय कृष्ण हैं, विषय जातीय सुख अमार आस्वाद, विषय जातीय जो सुख है उसका तो मुझे आस्वादन है, पांच रस के विषयों का, पांच रस के रसों का आस्वादन करते हैं विषय बन करके कृष्ण, किंतु आश्रय नहीं होने के कारण वो उस माधुर्य को नहीं प्राप्त कर सकते जो राधा और गोपियों को नंद बाबा यशोदा को है। विषय जाति सुख अमार आस्वाद, अमा है तो कोटि गुण आश्रय आह्लाद, किंतु आश्रयों का कोटि गुण हमसे आनंद होता है। Now you can explain Ram Ramchandra in English.